अभी तुमने लफ्ज़ अलहम्द किया, आगे चलिए लिल्लाह। अब इस लफ्ज़ को हाईलाइट करें, अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ को भी थोड़ा सा चेंज कीजिए। लफ्ज़ अल्लाह ना था, कुछ और होता। चलिए ज़रा आयत पे नज़र जमा के देखिए, अल्हम्दु रब्बिल आलमीन होता। लफ्ज़ अल्लाह को थोड़ा सा अपनी नज़रों से साइड पे करके देखिए, क्योंकि देखिए लफ्ज़ अल्लाह भी वही है, रब भी वही है, पॉसिबल था ना? तो फिर क्या नुकसान होता? आप इसको समझिए कि लफ्ज़ अल्लाह जो है ना, ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। जैसे आपका मेरा कोई एक असली नाम होगा, फिर कुछ नाम लोगों ने हमें लाड़ से और कुछ बिगाड़ के भी दिए होंगे, और कभी गुस्से में भी हमें कहते होंगे, ठीक है ना? लफ्ज़ अल्लाह को अगर हम हटा देते ना, तो ये नहीं पता चलता कि रब्बिल आलमीन कौन है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। आप देखिए, आप कहीं गए, सामने आपके नॉन मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, आप उसको कहते हैं प्रेस द गॉड, गॉड की तारीफ़ करो, तो वो क्या करेगा? वो फौरन अपने ज़ोम में तारीफ़ करेगा। लेकिन अब आपको नहीं पता चला कि उसने किस लॉर्ड की तारीफ़ की है। वो अपने हिसाब से जिसको खुदा समझेगा उसकी करेगा। और अगर आप उसको कहें प्रेस अल्लाह द गॉड, तो बात वाजह हो जाएगी ना। ये मज़मून आप कुरान में पढ़ चुके हैं, हज़रत मूसा के सामने जो जादूगर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? आमन्ना बि रब्बिल आलमीन। ये वही बात है जो आपको बता रही है, अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अल्हम्दु रब्बिल आलमीन होता। लेकिन साथ ही फिर उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, क्योंकि फिरौन को गलती ना लग जाए, क्योंकि वह ना रब्बुकुमुल आला कहता था। तो फिरौन को पता चल जाए कि तुझे नहीं कह रहे बल्कि मूसा और हारून के रब को था। तो अगर यहाँ लफ्ज़ होता अल्हम्दु रब्बिल आलमीन, मक्का वाले खुशी खुशी कहते देखो हमारे लात और मनात और रुजा को कहे कि वो रब्बुल आलमीन है, ठीक है? तो लफ्ज़ अल्लाह की बहुत ज़रूरत थी। अब एक दूसरी बहस कि चलिए लफ्ज़ अल्लाह ना आता, अल्लाह की कोई सिफत आ जाती। 99 नेम से तो हम सब वाकिफ़ है ना। मसलन कैसे होती? अल्हम्दुलिल खालिक, अल्हम्दुलिल माजिद, अल्हम्दुलिल मालिक। यानी लफ्ज़ अल्लाह को रिप्लेस कीजिए अल्लाह के किसी नाम से, अल्हम्दुलिल हकीम, तो क्या नुकसान होता? फिर आप देखिए, बिल्कुल ये होता कि अगर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल खालिक, तो सारी तारीफ़ खालिक के लिए, दैट्स इट, ख़त्म। बस अल्लाह की एक सिफत ही खालिक, हकीम वो हिकमतों वाले की है तारीफ, दैट्स इट, ख़त्म। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह बोलकर अल्लाह की सारी सिफात को हम उसमें ले आते हैं। तो पता क्या चला कि जो खूबी अल्हम्दुलिल्लाह में वो किसी और में नहीं। और आप देखिए, ये तर्जमे और असल कुरान का फ़र्क भी है। जब तक अरबी की असल नहीं समझ आएंगे ना, आप और मैं इस कुरान का हक नहीं अदा करेंगे। आप कहेंगे इन बारीकियों में जाने से होगा क्या? मुझे और आपको हो सकता कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि हमारे दिल की तख्तियों पे लिखा हुआ है कि ज़ालिकल किताबुल ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। लेकिन आज की जनरेशन के जहनों में क्वेश्चंस है, रियली वाकई ये सच है? कैसे है? आज हमारी जनरेशन के जहनों के अंदर ये सवाल छुपा हुआ है कि वाकई कुरान अल्लाह का कलाम है। देखिए, झूठ भी बार बार सुन के सच लगता है। बाहर जो खबरें फैल गई कि नबी सल्लम ने खुद लिख लिया था और कोई इनको आके लिखा देता था, तो हो सकता है ये सोचें। तो लिहाजा आज के दौर में अगर ये बातें हमें समझ आती हैं, तो हमारी हिदायत पे तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुरान से मोहब्बत बढ़ जाती है। अगले लफ्ज़ पे चलते हैं, रब। लफ्ज़ रब जो है ना अरबी ज़ुबान में किसके लिए आता है? अब इसमें चार पाँच चीज़ें, उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक का थोड़ी सी आपको डिफरेंस दूंगी। उर्दू में तो परवरदिगार है, और ये जो परवरदिगार लफ्ज़ है ना, ये भी असल में उर्दू का नहीं है, फारसी का लफ्ज़ है, परवरदिगार, ठीक है? अरबी ज़ुबान में रब कहते हैं हुवल मालिकु व सैयदु वल मुनइमु वल मुरब्बी वल क़य्यिम। अल्लाहु अकबर। एक लफ्ज़ रब में क्या है? वो मालिक है, मालिक आम लफ्ज़ है, हम सबको दिखता है कि जो किसी का मालिक हो। सैयद किसको कहते हैं? सैयद कहते हैं जिसका किसी चीज़ पर पूरी तरह कंट्रोल हो, कंप्लीट इख्तियार उसका, ठीक है? इसके बाद अगला लफ्ज़ है अल-मुनिम। मुनिम कहते हैं तोहफा देने वाला। देखिए, किसी को आप अजर देते हैं ना, वो फ़र्क है तोहफे से। अजर क्या होता है? किसी ने कुछ किया तो आप उसके जवाब में देते हैं, जैसे कोई जॉब करता है तो पे चेक आता है ना। लेकिन गिफ्ट क्या होता है? कुछ नहीं कोई करता। तो रब लफ्ज़ में तोहफे देने वाला रब है, कि वो कुछ तुम करो ना करो वो तुम्हें तोहफे देता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मुरब्बी। मुरब्बी कहते हैं किसी चीज़ के पलने भरने पर इख्तियार रखने वाला, नरिशमेंट करने वाला, ग्रो करने वाला, किसी चीज़ की ग्रोथ करने वाला, ठीक है, यानी जो किसी चीज़ को बढ़ाता भी है, जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। फिर अगला लफ्ज़ है कय्यम। कय्यम कहते हैं बरकरार रखने वाले को, जो बका का जिम्मेदार हो, किसी चीज़ को बाकी रखे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी, ये सारी बात मुश्किल जब आसान हो जाए हमारे लिए। बस अब देखिए, हम सब गाड़ी के मालिक होते हैं ना, अपनी गाड़ी आपकी है, लेकिन क्या सड़क भी आपकी है? और गाड़ी को चलाने के लिए आप पूरी तरह इख्तियार रखते हैं कि आप जितनी मर्जी स्पीड रखें, बेल्ट बांधे ना बांधे, तो आप कह सकते हैं कि आप गाड़ी के मालिक तो हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, सैयद नहीं है आप। किसी इंसान के लिए सोचिए, अगर एक इंसान किसी घर का मालिक है, हम उस घर के मालिक होते हैं, हम जब कहते हैं ना कि मैं इस अरबी ज़बान में, इसमें रब जो होता है ना, रब्बतुल बैत भी औरत को कहते हैं। सूरत यूसुफ में आप क्या पढ़ चुके हैं, रब भी शौहर के बारे में आया, ठीक है, आका को भी रब कहते हैं, कॉमन लफ्ज़ है ये, अल्लाह के अलावा औरों का भी हो सकता है। जब हम कहते हैं कि फलां किसी चीज़ का मालिक है, तो हम कहते हैं कि वो घर उसका भी है, वो उस पर इख्तियार भी रखता है, वो इस घर को दिन ब दिन बेहतर भी कर रहा है, तोहफ़तन इसमें चीज़ें भी लाता है, और साथ ही साथ इस घर की मेंटेनेंस का भी वो इख्तियार रखता है, संवारता है। ये सारी सिफात अल्लाह में है। अब आप अल्लाह ताला को ज़रा रब कह के ज़रा अपने दिल से पूछिए, अल्लाह सुबहाना ताला हमारा मालिक भी है, उसका हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल भी है, वो हमें तोहफे भी देता है, वो हमारी परवरिश भी करता है, हमारा ख्याल रखता है, और हमें बरकरार भी रखता है। कितनी नेमतें होती हैं जो इंसान के हाथ में होती हैं, कल नहीं रहती। अल्लाह को हम पे पूरा काबू है, कादिर है। कई लोग आपने अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते देखे थे, आज बिस्तर पे हैंडीकैप होते हैं। एक शख्स के बारे में मैं सुन रही थी कि वो पहले बहुत बड़ा प्लेयर था, बाद में उसको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हुई, एक एक करके जिस्म का एक एक कोस काम करता छोड़ता रहा, अब वो व्हीलचेयर पे, और कहता है कि 35 ईयर्स की मेरी एज है, और वो बड़ा खुश है। क्यों? कहता है कि अब जो मुझे अल्लाह से मोहब्बत महसूस होती वो पहले नहीं होती थी, पहले मैं बहुत मसरूफ़ था, तो जो अल्लाह ने इतने साल बीमारी इससे पहले सेहत के दिए, अभी मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो बात है कि अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मान लिया, तो हमें किसी से कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं रहेगा। आप देखिए कि आज हमें खुद नहीं पता हमारी आंखें हैं कल होंगी कि नहीं, लेकिन अल्लाह के हाथ में। फिर इसी तरह आप देखिए, अल्लाह ने जब ख़ुद को रब कहा है, तो क्या हमने अल्लाह को मजबूर किया? नहीं किया। रब लफ्ज़ जो है ना, इसका ऑपोजिट क्या है? जैसे दुनिया में हर चीज़ के कुछ ऑपोजिट होते हैं ना, मसलन जैसे आप कहते हैं बाप तो बेटा, इसी तरह माँ बेटी, उस्ताद है तो उसका शागिर्द, आजिर तो अजीर, है ना? तो लफ्ज़ रब जो इधर आया ना, इसका ऑपोजिट अब्द है, यही आपकी बंदगी। तो जब हम कहते हैं ना कि रब्बिल आलमीन, तो साथ ही हम कह रहे होते हैं कि वो रब है तो मैं अब्द हूँ। रब से आला लेवल कोई नहीं है दुनिया में, और अब्द से सबसे अब्द से नीचे कोई लेवल नहीं है। हम अल्लाह सुबहाना ताला के साथ ये सारे नाम जब सोचते हैं ना, तो हमें उसकी कदर आती है। फातह के शुरू में अल्लाह ताला ने हमारे और अपने ताल्लुक़ की बात कर दी है। अब एक छोटी सी बात करके आगे चलती हूँ कि अगर हम लफ्ज़ रब जो है इसको निकाल देते, सिर्फ अल्लाह ही की बात करते, अल्हम्दुलिल्लाह बस ख़त्म, रब ना आता तो ताल्लुक नहीं। लफ्ज़ अल्लाह का कोई अपोजिट नहीं है, यानी अल्लाह क्या है? सिर्फ अल्लाह, उसका कोई दूसरा नहीं है। तो गोया कि अल्लाह ताला यहाँ मेरे और आपके ताल्लुक की बात करता। देखिए कि अल्लाह के सब बंदे के ताल्लुक के बहुत से दर्जे हैं, मसलन खालिक और मखलूक, हादी और मुख्तदी, वो देने वाला हम लेने वाले, वो सिखाने वाला हम सीखने वाले। लेकिन ये सारे ताल्लुक कब बनते हैं? जब रब और अब्द का ताल्लुक होता है। दुनिया में लोग कभी इंसानों के गुलाम बने? आपने कभी देखा? एक बड़ा यूनिक नुक्ता है कि जब हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ए रहमान अर रहीम, ए मालिक तू मेरे ऊपर रहम फरमा, तो असल में हम अल्लाह की तारीफें कर रहे हैं ना। दुनिया में कभी किसी गुलाम को अपने आकाश की तारीफ करते देखा? कभी हमने आज गुलामी नहीं देखी, लेकिन सुनी भी है ना। अमेरिकन में आपको पता है कि ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन, एक जंग बहुत बड़ी थी उनकी जिसमें गुलामी हुई, वो गाड़ियों और बसों में बैठने की जगह अलग थी, ख़ानदान गुलामा सोचा। अमूमन आप देखिए अब्द की क्या ख्वाहिश होती है, नंबर एक वो आज़ाद हो जाए। दूसरी बात यह कि गुलाम जो होता है ना, वो अपने मालिक से अमूमन नफरत करता है। फिर इसी तरह अपने मालिक की तारीफ अगर करेगा भी ना कभी मजबूरन, तो खुशी से नहीं करेगा। फिर जब इंसान इंसानों के गुलाम बनते हैं तो वो उन पे जुल्म और ज्यादती करते हैं, लेकिन यहाँ कैसा गुलाम है जो है गुलाम लेकिन कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात समझ रहे? ये ऐसी गुलामी है जिससे बंदा निकलना नहीं चाहता। हर गुलाम की ख्वाहिश होती है मेरी जान छुटे मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अल्लाह का गुलाम बन के बंदा कहता है अल्लाह मुझे कभी अपनी गुलामी में से ना निकालना। अलामा इकबाल का शेर भी आपको याद होगा कि बंदगी लेके ना लूँ शान खुदाबंदी, कि मुझे अपना बंदा होना इतना अजीज है कि मैं इसके बदले में शान खुदाबंदी भी ना लूँ, कि अल्लाह वाली शान भी को मुझे दे दे मैं नहीं लेता, मुझे रब का बंदा बनना इतना प्यारा लगता है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि हमने अल्लाह ताला का बंदा बनने के लिए अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को देखना है। फिर आप देखिए आगे भी मानी के समंदर है, रब्बिल आलमीन है। लफ्ज़ आलमीन जो होता है ना ये अक्ल वालों के लिए आता है, आकिल जैसे जिसमें समझ हो, गैर जानदारों के लिए ये नहीं आता, उसके लिए अलब आलिम आता है। और आलिम जो है ना आलमीन में फिर वो तीन मखलूकात है, अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन कैसे हैं। अमूमन हम उर्दू में इसका तर्जमा क्या करते हैं, सब जहानों का मालिक, ये सही तर्जमा नहीं बनता। सब जहानों में हमारे जहन में जानदार और बेजान सारी चीज़ें आती हैं, हालांकि लफ्ज़ आलमीन जो है ना ये बेजान के लिए नहीं आता, जमा मुजक्कर सालिम है। तो लिहाजा रब्बिल आलमीन कहकर हम इस बात का इकरार करते हैं कि दुनिया में जितने अक्ल रखने वाले लोग हैं, अक्ल से मुराद अब अक्लमंद बेवकूफ़ नहीं, यानी सेंस है जिसमें, उन सब का रब है। और अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में हम देखेंगे कि उनको तीन हिस्सों में बांटा है, अला इनाम वाले, दुआलीन और भटके हुए। तो गोया कि हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ अपनी शान रबूबियत के बाद अपने रब्बुल आलमीन को बयान किया। और आगे चलिए अर्रहमान अर्रहीम, इंतहाई खूबसूरत बात। लफ्ज़ रहमान और रहीम दोनों का रूट एक है, रहम, रहम कहते हैं इसको उर्दू में, हमने उर्दू काफ़ी बिगाड़ी हुई है। आप कहते हैं कि अराब लगा दें ना हमारी उर्दू पे तो मानी बदल जाते हैं। बस आप देखिए कि ये जब उर्दू बोलते हैं ना, मिसाल हम किसी जगह कोई कहते हैं ना कि रोटी चावल वगैरह 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 लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, आप कहते हैं लफ्ज़ वगैरह नहीं है, वाह गैरू हो, वाह मैंने और गैर मैंने सिवाय हो, उसके ये अरबी का लफ्ज़ था, हमने इसको एरा वगैरह कर दिया। फिर इसी तरह आप देखिए जैसे लफ्ज़ हम बोलते हैं ना काफिरों ने ये किया, काफिरों को मारो, ये लफ्ज़ काफिरों नहीं है, ये काफिरून है। हमने अपनी उर्दू जो है ना वो काफ़ी इधर उधर से निकाल के उसको काफ़ी बदल बदल के उर्दू बना लिया है, ये किस्म की वो बस बिगाड़ी हुई ज़ुबान कह सकते हैं, लेकिन असल अरबी ना आए। और जिनको आती है वो हंसते हैं फिर हमारी उर्दू पे, क्योंकि हम वो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं मुसलमान, अब आप देखिए कि मुसलमान उर्दू में क्या लफ्ज़ है, मुसलमान, लेकिन आपको पता है असल में ये क्या है, मुसलिमानी। हम मुसलमान एक के लिए कहते हैं ना, एक मुसलमान दो मुसलमान, लेकिन अरबी में मुसलिमानी दो मुसलमान है। अल्लाह तो हमें अपने किताब में इतना डुबा ले कि हमें अपना गम ही ना याद रहे। तो अल्लाह ताला हमें अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पे कहते हैं कि लोगों मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जो लफ्ज़ रहमान और रहीम है ना, इसमें रहम है, माँ के पेट को रहम कहते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना मरसी, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें वो सारे लफ्ज़ ही नहीं आते जो अरबी ज़ुबान में है। कैसे? लफ्ज़ रहमत में अरबी ज़ुबान में नंबर एक मोहब्बत, नंबर दो ख्याल रखना, नंबर तीन जिस तरफ देखे वही दिखे, और नंबर चार मोहब्बत में लिपटा हुआ। ये सारे मानी रहमत में आते हैं, रहमत लफ्ज़ भी इसी से। आप देखिए कि माँ के रहम से रहमत को कैसे जोड़ा, यहाँ बच्चे की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, किसी चीज़ की कमी का माँ के पेट में बच्चे को एहसास नहीं होता। तकलीफ बच्चे को होती है, दर्द माँ को होता है। कभी आपने देखा प्रेगनेंसीज में माएँ बीमार हो जाएं तो फिर बताया जाता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है इसलिए माँ को पेट में दर्द हो रहा है, माँ बच्चे का दर्द सहती है। इसी तरह आप देखिए कि बच्चे को माँ के पेट में हर तरह की मोहब्बत मिल रही होती है, और इसलिए भी कि माँ के पेट में बच्चा महफूज होता है। माँ सोए जागे बच्चा खैर से है, माँ रोए करे बच्चे की मौजें लगी हुई हैं अंदर, माँ के साथ चिपका हुआ है। अर्रहमान अर्रहीम कह के अल्लाह कहता है तुम भी मेरे साथ ऐसे चिपक जाओ। जिस तरह अपनी माँ की गोद में आके किसी को सुकून मिलता है ना, इस तरह तुम्हें मेरे पास आकर सुकून मिलेगा, मेरी रहमत को महसूस करो। फिर आप देखिए लफ्ज़ अर्रहमान और फिर और रहीम की क्या ज़रूरत थी, एक ही लफ्ज़ काफ़ी नहीं था? लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लफ्ज़ रहमान फौलान जोशान अतशान, उर्दू में हम कहते हैं तूफान। क्या इसमें, यूँ देखिए मेरे हाथ से, जोश है। रहमान जो लफ्ज़ है ना, इसमें जोश है। टेम्परेरी फीलिंग्स होती है, नंबर एक लिख लें इसकी सिफतें। रहमान में क्या है, नंबर एक कसरत, मुबालगा एग्जेजुरेशन कह लें, कसरत। नंबर दो जोर, शिद्दत, ऐसे फ्लरिश करना जैसे आप टूटी खोलते हैं तो एकदम खुल जाती है ना। फिर इसी तरह इंतहा को बयान करना, ठीक है, इंटेंसिटी। और इसी तरह लफ्ज़ रहमान में आता है इंतहा से मोहब्बत करने वाला। अब रहमान क्या है, आरजी उनसर है, वो चीज़ जो अभी भी हो रही हो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, जलजला आया था आज से 4 साल पहले, उस वक्त हमारे दिल में कितने जज्बे उभरे उन लोगों के लिए, हमने क्या कुछ जमा करके उनको ना दे दिया। आज भी उस जलजला जदकान में से बहुत सारे लोग होमलेस होंगे, लेकिन हमारे दिल के जज्बे किधर गए, ख़त्म हो गए। तो आप कह सकते हैं वो जज्बे थे रहमान के, फीलिंग बता रही हूँ। वक्ती तौर पर किसी की हालत देख कर जो जोश उभरता ना, उसको रहमान की इस कैफियत से समझें। आज वो जज्बे हमारे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के पास कैसे, अर रहीम, आप साउंड से देखें, रहीम फाइल, ऐसे जैसे पानी की लहरें। रहीम में बिल्कुल अपोजिट है, रहमान में आरजी जोश उभरता है अल्लाह को किसी बंदे से मोहब्बत का, लेकिन रहीम में फिर वो ठहर भी जाता है। यानी अगर अल्लाह सिर्फ रहमान होता ना, एकदम किसी बंदे पे उसको बहुत प्यार आता और अगले लम्हे हो सकता है उसको तबाह कर देता, लेकिन रहीम की सिफत में फिर कॉन्टीन्यूटी आती है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, करेगा और करता ही रहेगा। मिसाल है, आप किसी को कहते हैं फलां बड़ा साबिर है, लेकिन आप उसका सब्र कब देखते हैं, जब उस पर कोई चोट पड़ती है। फलां बड़ा सखी है, लेकिन उसकी सखावत आपने तो नहीं देखी, बस एक जनरली सखी है। लेकिन कभी कोई आपको पकड़ा के 500 का नोट पकड़ा दे, आप कहते हैं हाँ वाकई ये तो बहुत इस वक्त सखी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंसान की ज़रूरियात दो तरह की होती हैं, एक आज की हैं एक कल की हैं, यानी फ्यूचर की हैं। मिसाल देती हूँ, बात वाजे हो जाएगी। मिसाल है कि आपके हस्बैंड जहाँ थके हारे घर आए और भूखे भी हैं, और वो क्या एक्सपेक्ट करें कि बेगम साहिबा ने अच्छा सा खाना पका के सजा के रखा होगा। पता चला बेगम साहिबा तो कुछ प्लानिंग्स कर रही हैं। ये बताइए वो जो अगले हफ्ते में दावत है उस दिन क्या पकाएंगे, क्योंकि अल्लाह की बंदी ये बताओ आज क्या पकाया। जब बंदे पे कोई मुश्किल पड़ती है ना, ये जुमला लिख लें, जब बंदा किसी मुश्किल में होता है ना, तो मुस्तकबिल की फिक्र ख़त्म हो जाती है। मेरी बला से मुझे तो आज भूख लगी है, खा पी लेगा फिर कहेगा हाँ ये पका लो वो पका लो। एक शख्स प्यासा है, प्यास से उसका हलक छिल रहा है, तो वो कहते हैं चिकन रोज़ बनाया लेके आऊँ शाम को आपको चिकन, वो कहेगा मुझे अभी पानी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अर रहमान से हमारे वक्ती मसले हल होते हैं और अर रहीम से हमारे मुस्तकिल और मुस्तकबिल के मसले हल होते हैं। अल्लाह की सिफत है, तो रहीमी के अंदर रहमत जनरल होती है। अल्लाह ताला इस दुनिया में रहमान है, आखिरत में रहीम होगा। दुनिया में रहमान किस पे, मोमिन और काफिर और फाजिर और जालिम और हर एक पे। आखरत में किस पे रहीम होगा, वकान बिल मोमिनीना रहीमा। आखरत में अल्लाह ताला का रहम सिर्फ मोमिनों पर होगा। हदीस में आता है कि दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है जिसकी वजह से ये काम चल रहा है। बच्चे से माँ मोहब्बत करती है, माँ बच्चे से मोहब्बत करता है, जानवरों के थनों से तुम दूध निकालते हो और वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन 99 दर्जे क़यामत के दिन मिलेंगे, तो क्या फिर शान होगी उस दिन के रहम की। करना क्या है, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है। जब हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो साथ ही फिर एक और बात है, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। ज़्यादा चौड़े ना हो जाओ, क्योंकि अभी तक जो सिफात सुनी ना, उसको सुन के कह रहे देर इज़ नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ ओके। वो देखो अल्लाह है, रब है, रहमान है, रहीम है, उसने क्या कहना है, का नहीं मालिक यौमिद्दीन हो।